नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची, गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगी। निर्वाचन आयोग आज 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले के देसी व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की और भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 130वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनल पर इसका प्रसारण शाम 7 बजे से होगा। दूरदर्शन के सभी चैनल हिंदी और अंग्रेजी में इसे प्रसारित करेंगे। इसके बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे से प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित करेगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भारत की आधिकारिक यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान भारत और यूरोपीय संघ की अगले चरण की महत्वपूर्ण साझेदारी पर चर्चा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। मंत्रालय के अनुसार यूरोपीय संघ के साथ भारत का जुड़ाव यूरोप पर उसके रणनीतिक महत्व को प्रदर्शित करता है। ये भारत EU शिखर सम्मेलन और जारी मुक्त व्यापार समझौते FTA के अनुरूप है। वर्ष 2024 तक यूरोपीय संघ में 9,31,000 से अधिक भारतीय रह रहे थे, जिनमें 16,000 से ज्यादा ब्लू कार्ड शामिल हैं। यूरोपीय संघ के नेताओं की ये यात्रा भारत EU संबंधों को सरकार की वैश्विक और यूरोपीय नीति का एक प्रमुख स्तंभ बनाने के इरादे को दर्शाती है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में भाग लेंगी। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय मेरा भारत मेरा वोट है। इसका नारा है भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक।
ये दिन हर साल भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन का उद्देश्य मतदाताओं के महत्व को रेखांकित करना, चुनावी जागरूकता बढ़ाना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। इसके अतिरिक्त ECI राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मतदाताओं, विशेष रूप से बार मतदान करने वाले मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इन गतिविधियों में राष्ट्रीय निर्वाचन पुरस्कार समारोह शामिल है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन क्षेत्रों को सम्मानित किया जाएगा और राष्ट्रपति की उपस्थिति में विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ मतदाता जागरूकता अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेडियो श्रेणी में मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार चुनावी भागीदारी को प्रोत्साहन देने और सुलभ चुनावों के बारे में जागरूकता फैलाने में आकाशवाणी के योगदान को मान्यता देता है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तत्वाधान में देश भर में विभिन्न मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुदुचेरी के कराईकल में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के अंतर्गत साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली का नेतृत्व केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र का आधार है। इसके लिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया शुरू की गई है। श्री कुमार ने कहा कि ये प्रक्रिया बिहार में सफलतापूर्वक पूरी की गई है और इस समय 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि शेष राज्यों में भी इसे शीघ्र शुरू किया जाएगा।
बिहार में SIR की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह रहा कि तैयार की गई मतदाता सूची पर एक भी अपील दर्ज नहीं हुई, जिससे इसकी पवित्रता और विश्वसनीयता सिद्ध हुई। इसी सशक्त आधार पर संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक रहे।
श्री कुमार ने बताया कि हाल में संपन्न लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन से संबंधित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
हाल ही में 21 से 23 जनवरी के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रबंधन और चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया। 70 से अधिक देशों के चुनाव प्रबंधन संस्थानों के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों, साथ ही कई देशों के राजदूतों ने भी भाग लिया। यह पहल भारत निर्वाचन आयोग की वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित प्रशासनिक उपाय कड़े कर दिए गए हैं। कोलकाता में मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों को सुनवाई के दौरान पेश किए गए दस्तावेज निर्वाचन आयोग के ECI नेट पोर्टल पर उसी दिन अपलोड करने का निर्देश दिया है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित करेगा। इन प्रतिनिधियों को गणतंत्र दिवस परेड के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। सम्मानित होने वालों में लगभग 240 सरपंच, मुखिया, ग्राम प्रधान, खंड और जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल हैं। इस अवसर पर यूनिसेफ के सहयोग से मंत्रालय द्वारा विकसित पंचायत सहायता और संदेश सेवा पंचम चैटबॉट का भी शुभारंभ किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर कल लखनऊ में एक जिला एक व्यंजन पहल का शुभारंभ किया। ये राज्य के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अनुरूप है। इसका उद्देश्य आगरा के पेठे, मथुरा के पेड़े, लखनऊ के मलाई मक्खन और कानपुर के समोसे जैसे राज्य के व्यंजनों को GI टैग के माध्यम से वैश्विक मानचित्र पर लाना है। इस पहल से छोटे खाद्य उद्यमियों और स्थानीय श्रमिकों को लाभ होने की संभावना है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश की प्रमुख भूमिका होगी।
जब 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी की सती मनाई जाएगी, हमारा उत्तर प्रदेश पूर्ण विकसित प्रदेश बनकर विकसित भारत का एक अहम राज्य बनेगा।
प्रधानमंत्री के सक्रिय सुशासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वर्ष 2015 में शुरू किया था। विशेष श्रृंखला में आज हम हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के परवानू सोलन खंड की जानकारी दे रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के परवानु सोलन खंड 4 लेन को बनाने की परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम फेज 3 के तहत लागू किया। इस परियोजना की लागत लगभग 1,635 करोड़ रुपए थी। ये राजमार्ग सोलन जिले के 33 राजस्व गांवों से होकर गुजरता है, जिनमें कई प्रमुख आबादी वाले क्षेत्र शामिल है। ये मार्ग घनी आबादी वाले और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील पहाड़ी इलाके से होकर जाता है। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृतियां, उपयोगिताओं को स्थानांतरित करना, भूमि की सीमाओं का निर्धारण और मुआवजे के भुगतान से जुड़े कई मुद्दों के कारण निर्माण कार्य में काफी बाधाएं आईं। डिजिटल शासन व्यवस्था के तहत प्रगति मंच पर यह परियोजना निगरानी समूह द्वारा किए गए उच्च स्तरीय समीक्षा और निगरानी ने लंबे समय से लंबित केंद्र और राज्य सरकार तथा विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे नीतिगत फैसलों को समयबद्ध तरीके से जमीन पर लागू किया जा सका। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
यूक्रेन ने कहा है कि अबू धाबी में संपन्न हुई त्रिपक्षीय वार्ता के बाद अगले सप्ताह के शुरू में रूस के साथ अतिरिक्त बैठकें हो सकती हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी में कल हुई वार्ता में फरवरी 2022 के बाद पहली बार अमरीका, रूस और यूक्रेन शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने एक पोस्ट में कहा कि वे युद्ध समाप्त करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में अमरीकी निगरानी और देखरेख की आवश्यकता की समझ की सराहना करते हैं। अमरीकी पक्ष ने संघर्ष की समाप्ति की शर्तों को औपचारिक रूप से निर्धारित करने के संभावित प्रारूपों के साथ साथ इसे व्यावहारिक बनाने के लिए आवश्यक सुरक्षा स्थितियों पर चर्चा की। सैन्य प्रतिनिधियों ने वार्ता के अगले दौर में उठाए जाने वाले मुद्दों को रेखांकित किया। जेलेंस्की ने कहा कि यदि आगे बढ़ने की तत्परता होती है और यूक्रेन तैयार रहता है तो अगली बैठकें अगले ही सप्ताह हो सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
मौसम विभाग ने पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में आज घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक घने कोहरे की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कल तक शीतलहर चलने की संभावना है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में आज गरज चमक के साथ मूसलाधार वर्षा हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कहा है कि 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता ने इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत से बाहर अपने निर्धारित मैच खेलने की बांग्लादेश की मांग ICC की नीति के अनुरूप नहीं थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज शाम 7 बजे से गुवाहाटी में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 2-0 से आगे है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरत नाज।
धन्यवाद मुकेश। रोजगार मेले में 61,000 नियुक्ति पत्र वितरित होने की खबर सभी अखबारों में है। अमर उजाला के अनुसार पीएम मोदी बोले, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोल रहे व्यापार समझौते। पंजाब केसरी की सुर्खी है, पीएम मोदी ने कहा ये विकसित भारत की तरफ एक कमिटमेंट। देशबंधु के अनुसार मोदी ने कहा युवा शक्ति के लिए निरंतर प्रयास कर रही सरकार। अमेरिका के भारत पर शुल्क घटाने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूएस के वित्त मंत्री बोले भारत से 25% टैरिफ हटा सकते हैं। दैनिक जागरण के अनुसार ईरान विरोधी पश्चिमी देशों के प्रस्ताव के खिलाफ भारत ने किया मतदान। ईरान के राजदूत ने कहा भारत के सिद्धांतवादी फैसले और समर्थन के लिए धन्यवाद। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी दी है, न्याय में देरी केवल न्याय से इनकार नहीं बल्कि न्याय का विनाश है। पत्र के अनुसार न्यायाधीश ने कहा मध्यस्थता को गंभीरता से प्रोत्साहित करें। देशबंधु ने तैयारी शीर्षक से लिखा है, गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर दिखेगी सेना की रणभूमि व्यूह रचना। पत्र के अनुसार परेड में युद्ध प्रणाली की दुर्लभ झलक देखने को मिलेगी, तकनीकी परिवर्तन भी दिखाया जाएगा। दैनिक जागरण ने सख्त कार्रवाई जरूरी शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि साइबर ठगी रोकने के लिए जागरूकता अभियान को अधिक व्यापक और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। पत्र के अनुसार अधिकांश साइबर ठग गिरोह विदेश से संचालित होते हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में इनके सदस्य लोगों को जाल में फंसाने का काम करते हैं। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस को अन्य राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करना होगा। साथ ही विदेश में बैठे मुख्य साइबर ठगों को सजा दिलाने के लिए भी आवश्यक कूटनीतिक और कानूनी कदम उठाने होंगे। अमर उजाला के अनुसार पहाड़ों पर दूसरे दिन भी हिमपात, गुरेज में बर्फीला तूफान, 100 से अधिक घरों को नुकसान, गुलमर्ग में 4 फीट से ज्यादा गिरी बर्फ, NCR में शीतलहर, राजस्थान के माउंट आबू का तापमान -7 डिग्री दर्ज। देशबंधु ने बर्फ से ढके केदारनाथ धाम को सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने सबसे बड़ा मुद्दा शीर्षक से लिखा है, कहां से मिलेंगे पोषक तत्व, बाजार ने मोड़ा खेती का रुख, दुनिया में 6,500 फल सब्जी की किस्में उगा रहे सिर्फ 48। पत्र के अनुसार विश्व की 80% अर्थव्यवस्था 20 किस्मों पर टिकी।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची, गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगी। निर्वाचन आयोग आज 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले के देसी व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।